ओम शांति। जैसे ही भट्टी शब्द का इस्तेमाल होता है, हम सब के अंदर एक अलग ही उमंग हो जाता है, भट्टी करनी है, भट्टी करनी है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भट्टी भी विभिन्न प्रकार की होती है, सोचा? उसकी विभिन्न स्थितियां होती हैं और उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए आज हमारे बीच है आदरणीय भ्राता रामलोचन भाई जी। आप लगभग 42 वर्षों से योग कहूं भट्टी कहूं अभ्यास कर रहे हैं और अपनी ये सेवाएं आप मात्र देश में ही नहीं, दूरंदाज देशों में, विदेशों में भी जाकर के देते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारे बीच है, यूं आप शांतिवन में वीआईपी भोजन व्यवस्था सारा संभालते हैं, यज्ञ की इस कारोबार में सहयोग देते हैं और आज हमें भट्टी क्या है, कैसे प्रयोग करें, कैसे आगे बढ़ें, उसके बारे में गहराई से बताएंगे आदरणीय रामलोचन भाई जी।
ओम शांति। आप सभी मीठे बाबा के घर में भट्टी करने आए हैं। भट्टी करना अच्छी चीज है, लेकिन हम सब भट्टी करते हुए भी जो भट्टी के द्वारा प्राप्तियां हैं वो निरंतर नहीं हो पाती। भट्टी के द्वारा प्राप्तियां मुख्य रूप से चार हैं। आप जितनी देर भट्टी करते हैं, देखना चारों प्राप्तियां हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं, तो भट्टी करने की विधि गलत है। पहली प्राप्ति है भट्टी अर्थात भगवान को राजी करना। जब आप जितना समय भट्टी में बैठे हैं, क्या हमारे संकल्प बोल कर्म या सुनने से भगवान राजी है या नहीं? क्योंकि भगवान राजी होगा तो भगवान वरदान देगा और वरदान सहज सफलता दिलाएगी। तो पहली बात, भगवान राजी है। दूसरी बात, भट्टी अर्थात भरपूरता का अनुभव होना। चाहे आप क्लास कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा स्वयं को भरपूर अनुभव करे। मुझे मिल रहा है, प्राप्त हो रही है, अनुभूति हो रही है, भरपूरता का अनुभव करे। तीसरा, भट्टी अर्थात स्वयं को भगवान के समान, मैं आत्मा मास्टर भगवान हूँ, भगवान के समान की स्थिति अनुभव करना, भगवान के पास जाकर बैठना, समानता का अनुभव। और चौथी भट्टी अर्थात परिपक्वता, जो हम सुन रहे हैं, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, ये अंदर से मन बुद्धि कह रही है कि आज से हम इसे पक्का कर लेंगे, मुझे करना ही है, इसका स्वरूप बनना ही है। अगर यह चारों प्राप्तियां हो रही हैं, तो आप समझो कि हम भट्टी का लाभ ले रहे हैं। अगर नहीं तो कर रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है। आप अपनी तरफ से कर रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है। अब इसकी चारों प्रकार की प्राप्तियों के लिए भट्टी की भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस में कहीं न कहीं अपने को स्थित रखो, क्योंकि सदा एक ही स्टेज मन की नहीं रह सकती है। आप सोचो कि मैं आत्मा हूं और आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, कितनी देर याद कर सकोगे? थोड़ी देर में मन भटक जाएगा, प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन इसकी भट्टी तो भट्टी की जो भिन्न भिन्न स्टेजेस है, किसी न किसी रूप में याद रखो। तो भट्टी चार प्रकार की है। भट्टी का अर्थ ही है भगवान को याद करना। तो चार प्रकार से है, याद, योग, तपस्या और भट्टी। याद, योग, तपस्या और भट्टी, इन चारों में कहीं न कहीं लगे रहो। चारों से चार प्रकार की प्राप्ति है। है एक बाबा की ही याद, लेकिन चारों से चार प्रकार की प्राप्ति है। याद से सुख मिलता है, योग से विकर्म विनाश होते, प्रकृति सतो प्रधान बनती है, तपस्या से राज्य मिलता है, तपस्या से राज्य मिलता है और भट्टी से परिपक्वता आती है, मजबूत हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। याद से सुख मिलता है, गायन है, सिमिर सिमिर सुख पाओ, कला कलेश मिटे तन का। आप देखो, क्या मुझ आत्मा को बाबा की याद में सुख मिल रहा है? सुख आपको तब मिलेगा जब बाबा की निरंतर याद होगी। और निरंतर याद का आधार है बाबा की निरंतर याद रहे, उसका आधार है बाप के साथ सर्व संबंध प्रैक्टिकल साकार में रखो। बाप के साथ सर्व संबंध प्रैक्टिकल में और साकार में रखो, क्योंकि आप आत्माएं इस साकार शरीर में हो और भगवान भी निराकार से साकार में आया हुआ है। तो जब आप साकार में हो, बाबा प्रैक्टिकल साकार का अनुभव कराता है, धरती पर आया है, तो जब उससे साकार में प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ो, तब आपको निरंतर याद रह सकती है। जैसे देखो, आप योग में बैठते हो, बाबा की याद में बैठते हो, तो संकल्प करते हो कि बाबा आप मेरे सर्वस्व हो, माता पिता स्वामी सखा गुरु सब आप हो, संकल्प करते हो ना। लेकिन जब आप योग पूरा करते हो तो क्या वही संकल्प साकार में रहता है, या आप लौकिक में हो? परिवार में तो रहना ही है। परिवार को देखते हुए मान लो आपने बच्चे को बच्चे की स्मृति से देखा कि ये मेरा लौकिक बच्चा है, क्या उस समय आपको बाबा हमारा बच्चा है याद है? दिल पे हाथ रख कर देखो, क्या है उस समय? बाबा भूला हुआ है। उस समय आपको बच्चा याद है। परिवार में जितना समय रहते हो, धंधे में जितना समय रहते हो, चेक करो कि क्या उतनी देर हमें परिवार धंधा है या लौकिक अलौकिक में परिवर्तित है। आप अगर बच्ची को देखकर बच्ची की स्मृति से देखा तो उस समय आप ब्राह्मण हो या क्या हो आप? उस समय क्या हो? शूद्र। उस समय भगवान के नहीं। अगर आप इस सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित नहीं करेंगे, तो आप बाबा को निरंतर याद नहीं कर सकते, ना बाबा के द्वारा जो याद से सुख मिलता है, जिस सुख का गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो, वो सिर्फ गायन मात्र रह जाएगा। प्रैक्टिकल गोपी बनकर उस सुख का अनुभव करें वो नहीं हो पाएगा। ज जब तक लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित नहीं करोगे। बच्ची को बच्ची की दृष्टि से ही देखोगे, लेकिन आंतरिक भाव ना हो कि ये ब्रह्मा कुमारी है या आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, अंदर की भावना ये हो। जैसे आप क्लास में जाते हो, मुरली सुनने जाते हो, आप जानते हो चंद्रकला बहन है, जानते हो चंद्रकला बहन है, देख रहे हो, लेकिन अंदर भावना है टीचर है या नहीं? तो टीचर होने के कारण वो भाव भावना है। उस दृष्टि से, उस स्मृति से, उस स्थिति से देखते हो। ऐसे लौकिक को लौकिक है, जानते हो है, लेकिन दृष्टि वृत्ति स्मृति स्थिति चेंज करो। अगर लौकिक बच्ची को देखा ये संकल्प आ जाए, कोई भी रिलेशन, ये भी ब्रह्मा कुमारी ही है या शिव बाबा की संतान आत्मा ही है, मेरे भाई या बहन, चाहे लौकिक में हो चाहे दुनिया में हो, अंदर की भावना तुरंत ये स्पष्ट हो। जैसे बहन जी को देखते ही है तो बहन ही ना, लेकिन लगता टीचर है, तुरंत मन में आता है ना, ऐसे ये मन में बिठाना पड़ेगा, ये मानसिक मेहनत करनी पड़ेगी। ये ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमार है। इससे क्या होगा, आपका बुद्धि योग वहां नहीं जाएगा। उसको देखते हुए आपका बुद्धि योग ऊपर रहेगा। जैसे आप बहन जी को देखते हो, अगर आप देखो बहन है तो भावना साधारण हो जाएगी, है ना। अगर वही टीचर है, भगवान ने इनको निमित्त बनाया है, इतना ऊंचा स्थान दिया है, गुरु भाई का स्थान है, इस स्मृति से देखने से कितना रिगार्ड उत्पन्न होता है, कितना सम्मान उत्पन्न होता है। ऐसे जिसको आप देखेंगे, देखेंगे उस भाव से, उस भाव को देखते हुए बाबा का बच्चा है, मेरे ब्रह्मा बाबा का बच्चा है, तो बाबा याद आएगा। नहीं तो याद मुश्किल हो जाएगी। भगवान प्रैक्टिकल में आया हुआ है। एक तो आप लौकिक को अलौकिक में चेंज करो, दूसरा भगवान को साकार में अनुभव करो। जैसे देखो लौकिक में आपका बच्चा है, तो जिस समय आप बच्चे से मिलते हो, अंदर कितना सुख महसूस होता है, बच्चे को खिलाते हो कितना सुख महसूस होता है। भगवान भी तो आपका बच्चा है। क्या भगवान को आप साकार में बच्चे के रूप से अनुभव नहीं कर सकते हो? जब आप साकार रूप में अनुभव करो, खाना खिलाओ, भोग लगाओ, आप समझ लो हम बच्चे को खिला रहे हैं, जिस समय बच्चा खाता है माँ की हृदय देखो क्या हो जाती, कितना खुश होती। क्या ऐसे बाबा को भोग लगाया खिलाया तो इतना हृदय खुश हुआ, इतना अंदर लगा कि मैं सचमुच भगवान को खिलाया है। ये आत्मा आत्मा छोड़ो, बाप है मेरे साथ है, चाहे निराकार है चाहे साकार है, है बाबा है साथ साथ है, इतना साथ उसको रखो। आप बिस्तर पर जाते हो, क्या नियम बनाया है, बिस्तर पर बैठेंगे चार्ट देंगे फिर बाबा को याद करके सो जाएंगे, नहीं। आप जाओ बिस्तर पर, बिस्तर बिछा दो, आवाहन करो बाबा आओ, आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, अब आप आइए, आपके सोएंगे फिर हम भी आपके साथ सोएंगे, आवाहन करो। ऐसे नहीं जाके बैठ जाओ, देखो अनुभव होगा बाबा आया है बिस्तर पर है, देखो क्या सुख मिलेगा आपको। आवाहन करो, खिलाने जाओ, ऐसे नहीं कि भोग लगा दिया सीधा सीधा, बाबा आओ आपके लिए भोग लाए हूं, बाबा आप खाओ। जब भक्ति में सबरी खिला सकती है, सब भगत खिला सकते हैं मूर्ति को, वो चैतन्यता का अनुभव करते हैं। यहां तो चैतन्य में भगवान आया है, वायदा है, बच्चे याद करो मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसे जब चैतन्य में अनुभव करो तब देखो कि सुख क्या होता है। इस सुख को कहा गया है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। ये सुख सुख है, लेकिन यह तब हो पाएगा जब याद की तीन स्टेजेस है, तीनों स्टेजेस में कहीं ना कहीं रहो तब। तीन स्टेजेस है, एक है याद करना पड़ता है, एक है याद आती है, एक है याद सताती है। याद करना पड़ता है, याद आती है और याद सताती है। जब सताने वाली याद तक पहुंचो तब उस सुख का गायन होगा कि जो अति इंद्रिय सुख है उस सुख का गायन तब होगा। एक है याद करना पड़ता है, मजबूरी है, बाबा को नहीं याद करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मजबूरी है। तो जब तक मजबूरी की बात याद आती है तब तक बाबा याद रहता है, फिर भूल जाता है। तो वो स्टेज तो शायद ब्राह्मण पार कर चुके हैं फिर भी अपना जानते होंगे। दूसरी है याद आती है, अब मेजॉरिटी ब्राह्मणों की स्टेज आने तक है। याद आती है माना जाती भी है, जाती है तब तो आती है, रहती नहीं है, लेकिन याद आती है। कुछ भी थोड़ा हुआ तुरंत बाबा बाबा तुरंत निकलने लगा है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए बाबा बाबा आता है। लेकिन ये थोड़ी देर रहती है, वो सीन बीतता है, बाबा भूल जाता है। लेकिन तीसरी है याद सताती है। अब कैसे सताएगी याद? सताएगी कैसे? देखो याद उसी की सताती है। लौकिक जीवन में भी अनुभव होगा जिससे प्यार हो जाता है। अगर प्यार हो गया तो उसकी याद सताने लगती। अब निराकार से प्यार जोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जोड़ना है। तो प्यार कब सताएगा उसका भी, प्यार की भी तीन स्टेजेस है। उस तीनों स्टेजेस में जो लास्ट की स्टेज है तब पहुंचोगे तब याद सताएगी। वो तीन स्टेजेस है प्यार की, प्यार, प्रेम, स्नेह। प्यार, प्रेम, स्नेह, तीनों में कुछ अंतर है। प्यार, प्रेम, स्नेह क्या है बाबा से? प्यार है या प्रेम है या स्नेह है? तीनों एक साथ नहीं हो सकता है, एक ही होगा एक समय। क्या कहेंगे पांडव? प्रेम, शक्तियां, प्यार। अच्छा, तीनों में अंतर है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। जिस दिन आप बाबा के घर में आए, आपको बाबा का परिचय मिला, बाबा के द्वारा जो प्राप्ति हुई उसकी नॉलेज मिली, तो भगवान से आपका प्यार जुट गया। प्यार जुट गया, स्वतः हो जाता है, मेहनत नहीं करनी। लौकिक में भी देखो स्वतः ही हो जाता है, लेकिन जो स्वतः होता है वो टूटता भी बहुत जल्दी। तो जब भगवान के घर में आए, भगवान का परिचय और प्राप्ति का पता पड़ा, प्यार जुट गया। जब प्यार जुटा तो प्यार जोड़ने के बाद आपका कदम आगे बढ़ा प्रेम की तरफ। कोर्स किया, मुरली सुनी, आपको धारणा की बातें बताई गई, और जब नियम धारणा की बात बताई और उस पर चलना शुरू किया, फिर विघन आना शुरू हो गया। और जब विघन आना शुरू हुआ तो क्या करते हैं फिर? अनुभव सबको होगा, क्योंकि सबके सामने आता ही है। परिवार का विघन, समाज का विघन, संस्कारों का विघन आना शुरू होता है। फिर उसको आत्मा कुछ अपनी शक्ति से, ज्ञान के आधार से उसको हटाने की कोशिश करती है। कुछ हटा पाती है। जब कोई कड़ा विघन होता है, नहीं हटता है, तब क्या करती है? तब सच्चे दिल से कहती, बाबा अब ये आप जानो, बाबा आप इस विघन को दूर करो। और जिस आत्मा ने सच्चे दिल से पुकारा उसको मदद मिल जाती और वो विघन हट जाता है। और जब विघन हटा तो प्रेम से के पथ से आगे बढ़ी। तीसरा आता है स्नेह, वो भगवान से स्नेह के ऊपर चली। स्नेह अर्थात जब आपका विघ्न हटा तो आत्मा दिल ही दिल ये बाबा से वायदा करने लगी, बाबा अब चाहे मेरा प्राण चला जाए मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, अब बाबा मैं आपकी ही रहूंगी, अब बाबा मुझ आत्मा का तन मन धन सब आपके हवाले। स्नेह के पथ पर चली। लेकिन तीनों में अंतर क्या है? प्यार स्वतः हो जाता है जो स्वतः टूटता है। जब आप आए तो आपके साथ दो चार छह हो सकता और आए होंगे, लेकिन कोई टिका नहीं। कोई एक दिन का कोर्स किया, कोई दो दिन का किया, कोई कितना दिन किया, चले गए। लेकिन जो टिके प्रेम, उसमें आपने प्रेम में क्या किया? भगवान से आप सौदाबाजी करते हो। क्या बाबा कुछ मैं करूं कुछ आप करो? पुरुषार्थ करना हमारा काम है, मदद देना आपका काम। बाबा ये विघ्न आपको हटाना है, कुछ सौदेबाजी है। और स्नेह अर्थात कुर्बानी, अर्थात जो स्नेही को पसंद है वही मुझ आत्मा को पसंद है। उसके लिए कितना भी त्याग करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, सब देंगे। लेकिन जो स्नेही को पसंद है वही मुझ आत्मा को पसंद है। जो संकल्प स्नेही को पसंद है वही संकल्प मुझे करना है। जो बोल स्नेही को पसंद है वही बोल मुझे बोलना है। जो कर्म स्नेही को पसंद है वही कर्म मुझे करना है। उसके लिए मुझे कितना भी त्याग करना पड़े, बलिदान देना पड़े, हम करेंगे। तभी कहा गया है कि स्नेह मांगती है कुर्बानी। आप बाबा की मुरली में देखो, बाबा कहता है बच्चे प्यार में तो सब बच्चे पास हैं, कहता है नहीं, प्यार में सब पास हैं और स्नेह में नंबर वार है। तो जब भगवान के साथ स्नेह जोड़ो, स्नेह अर्थात जो बाबा को पसंद है वही मुझे करना है। अपने हर संकल्प के टैली करो कि क्या ये संकल्प बाप को पसंद है। जो संकल्प आपके उठे चेक करो, क्या ये संकल्प बाप को पसंद है? कौन सा संकल्प बाप को पसंद है? वो संकल्प जिस संकल्प में बाबा की याद समाई हो, जिस संकल्प में शुभ भावना शुभ कामना समाई हो, जिस संकल्प में दूसरे को सुख देने का भाव समाया हो, वो संकल्प भगवान को पसंद है। चेक करो। इसके अलावा अगर दूसरा संकल्प आता है तो भगवान खुश नहीं होगा। अगर भगवान खुश नहीं है तो आप स्नेही नहीं बने, प्रेम करने वाले बने। लेकिन प्रेम में वरदान नहीं मिलता है, वरदान मिलता है स्नेही से। क्योंकि वरदान मिलने का आधार है वरदाता को राजी करना। जब तक वरदाता राजी नहीं होगा तब तक वरदान नहीं मिलेगा, और राजी होगा ही जब संकल्प बोल उसके प्रमाण चलाएंगे तब, ऐसे राजी नहीं। ठीक है, समझ में आई बात ना? तो एक बात, दूसरी बात, जो आप बोल बोलो चेक करो क्या ये बोल भगवान को पसंद है, कौन सा बोल भगवान को पसंद है। जो बोल दूसरे की स्थिति को ऊंचा ले जाता हो, जो बोल दूसरे को महान बनाता हो, जो बोल दूसरे के जीवन को श्रेष्ठ करता हो, वो बोल भगवान को पसंद। चेक करो, अगर ऐसा नहीं है तो चेंज करके इसी पर लाओ, और जो कर्म करो चेक करो कि मुझ आत्मा के करते हुए कर्म को देखकर क्या भगवान खुश हो रहा है, वाह इस बच्चे का श्रेष्ठ कर्म, वाह। वो श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? कर्म योगी बनकर कर्म करो। आपका हर कर्म भगवान के चरित्र को प्रत्यक्ष करे, आपका हर कर्म दूसरे को प्रेरणा दे। जैसे देखो, खाना खाते हो, कर्म कर रहे हो, अगर आप बाप की याद में रहकर खाओ तो दूसरे को प्रेरणा मिलेगी या नहीं? और ऐसे खा रहे हो तो अगर ऐसे खाओगे तो भगवान खुश नहीं होगा। अगर भगवान की याद में रहकर खाया तो भगवान खुश है। अगर आपका कर्म भगवान के चरित्र को अनुभव किया, जैसे आप चलते हो, जा रहे हो, अब अगर आप बाबा की याद में रहकर जा रहे हो, दूसरे को देखने से आपका चेहरा, आपका नयन, आपका चलन उसको प्रेरणा देगा। ये कर्म चरित्र बन गया। इसके विपरीत, अगर बाबा याद नहीं है, आप चलते हो, तो उसके लिए साकार बाबा क्या कहता था कि अगर कोई चलते समय किसी का पैर या चप्पल खटपट थोड़ी आवाज कर दे तो बाबा कहता था ये कलयुगी मानव है, ब्राह्मण नहीं। और मम्मा क्या कहती थी, अगर चलते समय किसी का चप्पल घिस पिस कुछ हुआ तो मम्मा कहती थी जो रॉयल्टी से चल ही नहीं सकता है वो क्या रॉयल पद पाएगा। जिसका चप्पल चलते समय घिस पिस हो रहा है उसका पद भी घिसा पीटा ही है। सबको अनुभव होगा कि जब बाबा की याद में चलते हो तो कैसे कदम उठते, और नहीं होता तो कैसे कदम उठते, अंतर पड़ जाता है। तो आप चेक करो कि मुझ आत्मा के कर्म भगवान को पसंद हैं। जब आपके कर्म भगवान को पसंद हो, संकल्प बोल कर्म तीनों जब भगवान के पसंद हो, तब आपको भगवान का वरदान प्राप्त होगा। और जब भगवान का वरदान प्राप्त हो गया तो असंभव काम सहज हो जाएगा। असंभव शब्द है, सहज हो जाएगा। जैसे देखो अपनी गुलजार दादी है, जब छोटी थी हैदराबाद सिंध में थी, तो वहां ये बहुत तपस्या शुरू से करती थी, बहुत कम बोलती थी, रमणीक थी, हसमुख थी। तो इसकी तपस्या को देखकर, इसकी बाणी को देखकर बाबा ने उस समय वरदान दिया था, तब वरदान दिया था कि क्या, कि इस बच्ची के नयन बड़े रूहानी हैं, आगे चलकर इसके नयन बहुत सेवा करेंगे। इस बच्ची की बाणी बड़ी मीठी है, आगे चलकर बहुत सेवा करेगी। वरदान तब दिया और बाप दादा खुद वही नयन वही मुख। तो वरदान लेने में मेहनत है, लेकिन जब वरदान मिल जाता है तो फिर वरदान अपना काम करता है, आपकी मेहनत समाप्त हो जाती है। अब गुलजार दादी को कहना नहीं पड़ता बाबा मेरे में आओ, हाई बंधा हुआ है, आना ही पड़ेगा, बंध गया, वरदान दिया हुआ है। भक्ति में भी देखो, जो देवी देवता वरदान देता है, उस वरदान को पूरा करने के लिए बांधायमान होता है। तो भगवान ने वरदान दिया तो बांधायमान है, उसको पूरा करना है। तो भगवान से वरदान लेने की विधि, उसे राजी करो। तो प्यार प्रेम स्नेह, जब भगवान के साथ स्नेह जोड़ो, उसके लिए हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी बलिदान देना पड़े, लेकिन बाबा मेरे से नाराज ना हो, बाबा मेरे से सदा खुश रहे, जब ऐसा आपका आंतरिक संकल्प हो और करने का पुरुषार्थ हो, तब देखो आपके जीवन की खुशी, तब देखो आपके जीवन की संतुष्टता, तब देखो आपके चेहरे की चमक क्या होती। फिर जो बाबा कहता आपका चेहरा सेवा करे, तब देखो सेवा करता, ठीक है। तो याद से सुख मिलता है, सुख प्राप्ति का आधार स्नेह वाली याद, स्नेह वाली याद, अर्थात जो कुछ भी स्नेही के पीछे त्याग करना पड़े, सत्याग। और स्नेह वाली याद का आधार है भगवान के साथ साकार में सर्व संबंध जोड़ना। आप क्लास से उठोगे, ऐसे नहीं उठ के चल पड़ो, उठो, आवाहन करो, बाबा क्लास पूरा हुआ, अब आप चलो, हम आपके साथ साथ चलते हैं, हम आपकी उंगली पकड़कर चलेंगे, बच्चा बना लो, बच्चे बन जाओ, दोस्त बना लो, सहेली बना लो, ऐसे नहीं उठ के भागो। हर बात में पहले बाबा को लाओ, आवाहन करो, बाबा आओ, बाबा आओ, ये आदत डालो। बाबा 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 अगर हो जाए, आज एक क्लास सुन रहे थे टीवी में करुणा भाई की, कि मम्मा कानपुर गई थी, बहुत पहले की बात है, शुरू की बात है, तो मम्मा से मिलने एक पंडित आया था, भगत था, तो मम्मा वरदानी रूप में फेमस थी, तो सब जाते थे मम्मा से, कहते थे मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दो, वरदान मांगते थे, लेकिन वो पंडित कहता था मम्मा मेरे गले पे हाथ रखो, मेरे यहां गले पे हाथ रखो। और मम्मा तो मम्मा है, माँ की मूर्ति है, उसने उसके गले पर हाथ रखा। तो जब गले पर हाथ रखा तो मम्मा को आभास हुआ कि इसके गले से निरंतर राम राम की आवाज आ रही है, निरंतर राम राम की आवाज आ रही है। जब भगत ऐसे हो सकते हैं तो हम निरंतर बाबा बाबा क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन हम बाबा को साकार में साथ लाते नहीं हैं, हम ऊपर ही लटकना चाहते। शरीर नीचे है, कर्म यहां है, लटकते ऊपर। ऊपर लटकने का टाइम अलग है, कर्म क्षेत्र पर साकार में उसको रखो, उसका सुख लो, संबंधों का सुख लो। मां का सुख क्या होता है, बाप का सुख क्या होता है, बच्चे का सुख क्या होता है, पति का सुख क्या होता है, पत्नी का सुख क्या होता है। भगवान हमारा सर्व संबंधी है, सर्व संबंधों का सुख लो, आवाहन करो, बुलाओ, हाजिर है। इतना प्यार से उसको बंधन में बांध लो कि वो आपसे जा नहीं पाए। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहता है कि मैं घोड़े पर सदा सवार नहीं होता हूं, कहता है ना, मुरली सुनाया और भागा। लेकिन ब्रह्मा बाबा इतना शिव बाबा को याद करता था कि वो जा ही नहीं पाता था, वो भागने की कोशिश करता था, बाबा बैठा लेता था। इतना याद किया कि बाप दादा कंबाइंड हो गए। ब्रह्मा बाबा बोलता है, शिव बाबा बोलता है, यही पता नहीं, कंबाइंड हो गए। इतना बाबा को साकार में लिया। और जैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाता है कि मैं नहाने जाता हूं तो याद करता हूं बाबा मुझे नहला रहा है, बाबा मेरे ऊपर लोटी चढ़ा रहा है। कभी बाबा कहता मैं शिवलिंग के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूं। साकार में लाओ, साकार में लाओ तो सुख मिलेगा। दूसरा है योग। योग के द्वारा बेकर्म विनाश होते। योग लगने का आधार है, आप योगी बनो उसका आधार है। एक तो अशरीरी होने का अभ्यास, जब टोटल आत्मक स्वरूप में टिको, दे नहीं, दे के संबंध नहीं, बस मैं नंगी आत्मा हूं। जब इतने अपने को नंगा बना पाओ, मैं हूं ही ज्योतिर्बिंदु आत्मा, फिर आपका परम आत्मा से योग लगे। याद में साकार में आओ, योग में सबसे परे चलो, ये सब बोलो, आत्मक स्वरूप में टिको। तो एक है आत्मक स्वरूप का में टिकना, दूसरा योग का आधार है एक आस, एक बल, एक भरोसा। हर बात में एक आस, एक बल, एक के ही बल का भरोसा। जब यह दिल में पक्का हो तब शिव बाबा के अलावा दूसरी तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। पहली बात है कि आत्मक स्वरूप में टिकना, क्योंकि जितनी देर आप अपने को आत्मक स्वरूप में टिका पाएंगे उतनी देर ही शिव बाबा याद है। आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा है, लेकिन जितनी देर टिका पाएंगे तो, लेकिन आत्मक स्वरूप में टिकना, योग में बैठते हैं हर एक अनुभवी है कितना मुश्किल बात है। याद करना फिर भी सहज है, लेकिन योग करना मुश्किल। अब आत्मक स्वरूप में टिकने की विधि क्या है? हम सबको जब से ज्ञान मिला, जब से मिला, तब से इसी बात का अभ्यास कर रहे हैं कि हम ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास कर रहे। लेकिन कितनी सफलता मिली है, कितना आत्मक स्वरूप में टिके हो, वो आप जानते होंगे कि क्या कंडीशन पर कहां है अभी। अगर कोई प्रश्न पूछे आत्मक स्वरूप में कब टिक पाएंगे, तो आत्मा के विपरीत शरीर है, देहभान वह। तो जितनी बार आप देहभान में आकर मैं किया है, सतयुग से ही शुरू हो गया है, उतनी बार आत्मा कहोगे तब आत्मक स्वरूप में आओ। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक कितनी बार मैं किया होगा इसका भान सोच सकते हो? अनगिनत। उतनी ही अनगिनत बार मैं आत्मा हूं करना पड़ेगा, तब ओरिजिनल में आओगे। सतयुग में देह भान होता है या आत्म भान होता है? आत्म भान। पांडव देह भान, आत्म भान होता। अच्छा, पीछे वाले क्या जो कहते हैं आत्म भान होता है हाथ उठाओ। कोई देह भान वाला भी है जी? सतयुग में आत्म भान नहीं होता है, देह भान होता है। देह अभिमान नहीं होता है, लेकिन देह भान होता है। देह अभिमान माना पांच विकारों के बस अब है। देह भान अर्थात देह का भान, मैं राजा हूं, ये रानी है, पत्नी है, बेटा है, नौकर है, ये सब भान रहेगा सतयुग में या नहीं रहेगा? तो क्या हुआ? देह भान। देह भान होगा लेकिन अभिमान नहीं होगा, वहां विकार नहीं होंगे, नेचुरल आत्मक स्वरूप रहेगा। नेचुरल, नेचुरल का मतलब ये नहीं रहेगा कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, ये नहीं होगा। लेकिन मैं आत्मा जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, तब लगेगा कि मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर जा रही हूं, उस समय आत्मक स्वरूप इमर्ज होगा। बाकी सारा समय खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, घूमेंगे, सारा जीवन। तो आत्म भान पक्का करो, ठीक है? लेकिन आत्म भान पक्का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आत्मा की चार स्टेजेस हैं। जब तक उन चारों स्टेजेस का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक चाहे सारा जीवन लगा दोगे मैं आत्मा हूं रट रट के, हो नहीं पाएगा। बाबा के चार शब्द मुरली में सुनते होंगे आत्मा के बारे में, उन चारों शब्दों में टिकना है। पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, इन चारों स्टेजेस का जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आत्मक स्वरूप में टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आत्मा कर्म योगी हैं, हम आत्मा कर्म क्षेत्र पर हैं, हम आत्मा सृष्टि पर हैं, तो हमें निरंतर आत्मक स्वरूप में टिकने के लिए इस चारों स्टेज का अभ्यास करना पड़ेगा। पहली बात है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात कर्म करते हुए आप आत्मा मालिक बनकर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराओ। इस देह का मालिक बनकर, देही बनकर, देही स्वरूप में स्थित होकर इस देह के द्वारा कर्म कराओ। जब आप कर्म क्षेत्र पर आत्मक स्वरूप में टिककर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने का अभ्यास करेंगे तब आत्मक स्वरूप में टिकना सहज होगा। कर्म में भी दो स्टेज है, एक है मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा हाथों के द्वारा पानी पी रही हूँ, एक स्टेज ये है। लेकिन आपको इस स्टेज से भी ऊपर चलना है। कौन सी स्टेज? मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं, इस इंद्रियों से न्यारे। जैसे मैं आत्मा हाथ को ऑर्डर करती हूं कि हे हाथ, इस गिलास के पानी को उठाओ और मुझे पिलाओ। आत्मा करण करावन हार है, करती है कराती है। जैसे बाबा करण करावन हार है, ऐसे आत्मा भी करण हार है और करावन हार है। आत्मा इन इंद्रियों का मालिक भी है और इन इंद्रियों के द्वारा करती भी है। तो कभी अभ्यास इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने का करो, और कभी थोड़ा हल्का काम हो जैसे पानी पीने का काम है तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कराओ, मालिकपन की स्टेज लाओ। मैं मालिक हूं, इन इंद्रियों को ऑर्डर दे रही। तब आप आत्मा में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर आएगी। अगर आप इंद्रियों के द्वारा कराएंगे नहीं तो रूलिंग पावर नहीं आएगी। अगर रूलिंग पावर नहीं आई तो राजा बनने का सवाल ही नहीं होता, प्रजा ही बनना पड़ेगा, नौकरी बनना पड़ेगा। क्योंकि राजा रूल करता है, राज्य करता है, नियम ऑर्डर देता है। तो इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कराओ और कभी करो। भोजन करने जाते हो कभी बाबा की याद में खाओ, और कभी आत्मा ऑर्डर करे, क्योंकि आत्मा इन कर्म इंद्रियों का भी मालिक है, तो मन बुद्धि संस्कार का भी मालिक है, उसको भी ऑर्डर करे, हे मन बाबा की याद में खाओ। दूसरा संकल्प नहीं करो, हे बुद्धि तुम बाबा को दिव्य नेत्र से देखती रहो, देखती रहो, दिव्य रूप को देखती रहो। हे संस्कार तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिके रहो। ये अभ्यास करो। ये ब्रह्मा बाबा ने बहुत अभ्यास किया है तब इन इंद्रियों का राजा बना है, तब अष्ट में नंबर वन आया है। तो पहली बात है देही अभिमानी, दूसरी बात है आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात जब आप बाबा की याद में बैठते हैं तो टोटल आत्मक स्वरूप में टिक जाओ। मैं हूं ही आत्मा, नंगी आई थी नंगी जाऊंगी, मैं हूं ही आत्मा। टोटल आत्मक स्वरूप में टिको तब आपका योग लगेगा, तब बाबा से जो शक्तियां आएंगी उससे आत्मक स्वरूप में कर्म क्षेत्र पर रहने की शक्ति आ जाएगी, उसका स्वरूप बन जाएगा। और तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात चलते फिरते उठते बैठते किसी न किसी सोमान में रहना, सोमान में रहकर चलना, साधारण चल नहीं। मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं गार्डली स्टूडेंट हूं, जैसे आज की मुरली में था, कुछ तो अपने भाग्य की महिमा करो कि मुझे निराकार भगवान पढ़ाता है, हम निराकार भगवान के गार्डली स्टूडेंट। किसी न किसी सोमान में रखो, जो भगवान की महिमा वो आपका सोमान। किसी न किसी सोमान में रखोगे तो आपके चाल चलन में परिवर्तन रहेगा, संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति बोल भावना सब चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ब्रह्मा बाबा को हमेशा ये रहता था कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, वो इस सोमान में सदा रहता था, इसलिए देखो उसके मुंह से सदा बच्चे बच्चे निकलता था, चाहे बुढ़ा हो चाहे छोटा बच्चा हो बच्चे निकलता। तो ब्रह्मा बाबा को ये सोमान था कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, इस सोमान की स्थिति के कारण वो अपनी पत्नी को जसोदा को बेटी कहता था, जसोदा बेटी। आज तक कोई भी धर्म पिता अपनी पत्नी को बेटी नहीं कहा है, कह ही नहीं सकता है, मां माना है, बहन माना है, लेकिन बेटी नहीं कहा। मेरी बेटी, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं। आप सिर्फ यही सोमान में रहो कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, यही सोमान। ये सोमान आपके दृष्टि वृत्ति बोल कर्म सब चेंज कर देगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अलौकिक बन जाओगे। तो सोमान में रहो। और चौथा है अशरीरी, अर्थात जब आप आत्मा परम धाम में हैं, बाबा के पास हैं, तो बिना शरीर के, अशरीरी शरीर नहीं है वो, टोटल आत्मा है। इस आत्मक स्वरूप की स्थिति के लिए आपको डेड साइलेंस का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंस भी तीन प्रकार की है, क्लियर नहीं करेंगे आप सोच लेना। एक है साइलेंस, एक है स्वीट साइलेंस, एक है डेड साइलेंस। तो इस स्वरूप में टिकने के लिए साइलेंस, डेड साइलेंस में जाना पड़ेगा। टोटल आत्मक प्रकाश स्वरूप की स्थिति में प्रकाश स्वरूप बाबा से शक्ति ले, टिक कर देखो। जैसे मर गए शरीर है, टोटल आत्मा परम धाम में टिक कर। जब आप कुछ देर वहां टिको, वहां बैठो, क्योंकि चलना तो वही है, फिर आपकी वो स्थिति आएगी, फिर अशरीरी आप बन सकोगे। तो जब ये चारों स्थितियों का, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, जब इन चारों का आप अभ्यास करते रहो, तब आप आत्मक स्वरूप में टिक सकोगे। और जब आत्मक स्वरूप में टिको, फिर आपका योग भगवान के साथ लगे। बिना आत्मक स्वरूप में टिके योग नहीं लगेगा। 5 मिनट और ले लूं? ये टाइम हो गया है? 5 मिनट सिर्फ यही क्लियर कर देते हैं। तो आप सब अभी तक योग का अभ्यास किया है। इस योग के अभ्यास से आपके विकर्म विनाश हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपको पता पड़ा या नहीं, या यही संकल्प रखा है कि मेरा काम है योग करना, बाकी बाबा जाने? नहीं, बाबा जाने राइट है, लेकिन मैं भी जानू, विकर्म हमने किया है, भस्म हमें करना है। तो आप देखो, इतनी देर योग किया, क्या मुझ आत्मा के कितने विकर्म विनाश हुए, कितने परसेंटेज में विनाश हुए, ये आपको पता पड़ता है? अच्छा, आपको परख बताते हैं, चेक करना कि कितना विकर्म विनाश हुआ है। जब आप योग में बैठे थे 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, जो भी जितनी देर बैठे, जब आप योग पूरा करेंगे, तो योग पूरा करने के बाद एक ही संकल्प आएगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। ना कुछ इधर उधर देखने का मन कहेगा, ना कुछ बोलने का मन कहेगा, ना शरीर का भान आएगा, बस एक ही संकल्प आएगा, और बाबा को याद कर, और बाबा को याद कर। तो जितना आपको बाबा के याद की कोशिश हो रही है, जितना खेंच हो रही है, उतना आपके विकर्म विनाश हुए। जैसे बाबा कहता है, जितना लोहे से जंग हटेगा चुंबक खींचता है, तो जितना जंग हटेगा उतना चुंबक बाबा खींचेगा। तो ये खिंचाव सिद्ध करता है, कितना खिंचाव हो रहा है उस आधार से आपके विकर्म विनाश हुए। अब योग में कौन सी स्टेज में विकर्म विनाश होते हैं? योग में जब आत्मा परमात्मा की याद में समा जाए, कुछ देर आप आत्मा और परम आत्मा दोनों मिलकर एक हो जाए, थोड़ी देर बाबा की याद में समाये रहो, दूसरा संकल्प ना आए, जब थोड़ी देर कंटिन्यू जब बाबा में समाये रह जाओ, तब बाबा की याद की शक्ति से आपके विकर्म विनाश। जैसे देखो, सोने से जब अलाय निकालनी होती है तो सोने को आग के अंदर डालते हैं, जब आग और सोना दोनों मिलकर एक हो जाता है, तब आग की गर्मी से सोना पिघलता है और अलाय जल जाती है। ऐसे जब आप थोड़ी देर कंटिन्यू एक ही संकल्प में टिके रह जाएं, बाबा के अलावा और कोई संकल्प ना आए, बस परम धाम में आप ज्योतिर्बिंदु आत्मा और ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, फिर भी कर्म विनाश। ऐसे आप मेहनत करके ऊपर पहुंचते हो, तब तक फिर कुछ इस दुनिया का संकल्प आ गया, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चढ़े, ऐसे करने से विकर्म विनाश नहीं होगा। अगर कोई आत्मा 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट, इस स्वरूप में निरंतर टिक जाए, तो उसके एक जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे। एक जन्म कम नहीं है बात, लेकिन इसके लिए इतना आत्मक स्वरूप का अभ्यास चाहिए। और उसका आधार बताया, बेहद की वैराग्य वृत्ति और उपराम स्थिति, बेहद की वैराग्य वृत्ति और उपराम स्थिति, इस पर सोचना। जब ये आ जाए तब आप वहां टिक सकते, फिर आपके विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी का, आपने बहुत अच्छा डेप्थ में ले गए हम सबको।
याद रखना जैसे बताया है, योग पूरा होते उठ के नहीं भागना, आवाहन करना, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड भी, आवाहन करो, फिर उसको साथ में लेकर उठो, साथ में लेकर चलो।